जहाज अभी ग्रहण लगा हुआ है। कितना बजा? चार बज करके अट्ठारह मिनट में लगने वाला था। चार बज के यहाँ जम्बू में 18 मिनट पर यह ग्रहण लग है? क्या माइक किया? चार बज करके 18 मिनट पर ग्रहण लग गया है और 5 बज करके 10 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। यो तो ग्रहण का नियम होता है कि ग्रहण के पहले स्नान किया जाए, मध्य में स्नान किया जाए और फिर अंत में मोक्ष स्नान किया जाए। घर में घड़े और बाल्टी के पानी की अपेक्षा कुएं का पानी कुएं में, और कुआं से भी बढ़कर तालाब, और तालाब से भी बड़ा सरोवर, उससे भी नदियों की धारा में, गंगा इत्यादि नदियों की धारा में यहाँ रावी, और उससे भी श्रेष्ठ समुद्र, ऐसे नियम हैं। और उस समय अपने इष्ट देव का सर्वोत्तम मंत्र जप किया जाए, मंत्र का जप हो। उस ग्रहण में यदि कोई मंत्र का जप करेगा तो उसकी सिद्धि होती है। किंतु और भी एक विचार है, कलयुग में नाम कीर्तन प्रधान है, इसलिए हम लोग सामूहिक रूप में भगवान के जितने भी मंत्र हैं उनमें महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अभी कीर्तन कुछ देर करेंगे और सभी लोग उसमें योगदान करेंगे और तत्पश्चात हम लोग कथा आरंभ करेंगे। ये भी समझ लीजिए कि कृष्ण जिस समय में ब्रज से गए, मथुरा में कुछ दिनों तक रहे, जरासंध से युद्ध इत्यादि होने के लिए, और फिर एक ही रात में द्वारका चले गए और वहाँ भीम सेन के द्वारा जरासंध का वध कराया, और तत्पश्चात पौंडरिक वासुदेव इत्यादि बहुत से मैदानों इत्यादि का, कालजमन इत्यादि का वध कराया, और कृष्ण सुजोग देख रहे थे ये ब्रज में कैसे आऊं। इतने में ग्रहण लगा पूर्ण ग्रास सारे भारतवर्ष से, और इधर उधर के लोग, उस समय का प्रधान तीर्थ था क्या, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर परशुराम ने 36 बार क्षत्रियों का निधन कर और उस सरोवर में स्नान किया था। उसमें स्नान करने का बहुत महत्व उस समय सत्ययुग के लिए। उस समय में कृष्ण अपनी सारी रानियों को साथ लेकर, महाराज वसुदेव को साथ लेकर, माता देवकी को, रोहिणी को, सबको लेकर के वहाँ गए। और यह समाचार नंद बाबा को मिला। नंद बाबा भी मैया जसोदा और वहाँ की जितनी ग्वालिनें थीं, ब्रजंगनाएं और विशेष करके विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका जी को और इनको सहेलियों को लेकर वहाँ पर पहुँची। जिस समय में वहाँ पर पहुँची, बैलगाड़ी जिसमें चार बैल लगे रहते थे, बड़े सुंदर सुंदर, उन छकड़ों पर नंद बाबा जसोदा चढ़ कर के आए। गोपियाँ भी पृथक पृथक गाड़ियों में आईं, सारे ब्रजवासी लोग आए। जब कृष्ण ऋषियों महर्षियों की सभा में थे, वहाँ पर भीष्म पितामह और सब लोग उनसे मिल रहे थे। देवकी और वसुदेव जी भी वहाँ पर थे। जब सुना जो मैया जसोदा नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ में आ रहे हैं, तो सबको छोड़ कर के एकदम और मैया मैया कहते हुए, इतनी उम्र में भी भूल गए अपनी उम्र की बात, और रोते 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 मैया मैया कहते उन छपड़ों के पास में आए। उधर जसोदा मैया नंद बाबा गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद में कृष्ण जसोदा मैया के गोद में बैठ करके रोने लगे। जसोदा मैया भी रोने लगी। उस समय दोनों का रोना देखकर देवकी ने सोचा कि अब तो कृष्ण नहीं जाएगा द्वारका, इतना प्रेम, मुझसे तो कुछ प्रेम ही नहीं करता। तो वो बीच में बोली, जसोदा तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, बड़ी उदार हो, मेरा बेटा हुआ मैंने तुम्हारे यहाँ भेज दिया कंस के डर के मारे, और तुमने आँख की पुतलियों की भांति इसको रखा, सारे सुख दुख भूल गई तू, और जैसे पलक आंखों की रक्षा करते हैं उस प्रकार से रक्षा की। इतने में रोहिणी मैया आ गई, सोचा यह रहेगी तो विघ्न होगा। वो आकर के बोली, सखी और सब लोग बाहर में खड़े हैं, उनको अभिवादन करना है, चलो उनसे मिलने के लिए, पांडव लोग आए हैं और सब लोग आए हैं, कह करके और उनको वहाँ से लेकर के चली गई। और इतने में राधा जी और उनकी सहेलियाँ जो विरह के ताप में जल रही थी, जो अब तक तो धैर्य धारण की हुई थी, अब धैर्य धारण करना निकट आ गए ना, इसलिए धैर्य धारण करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब प्राण गए मिलने के लिए। जसोदा जी ने देखा, समझ गई और बलदेव का हाथ पकड़ करके वो भी बाहर निकल गई उन लोगों से मिलने के लिए, और गोपियां वहां पर मिली। इतनी विरह में कातर थी, बहुत दिनों के बाद में आज कृष्ण से मिली, कितने दिन हो गए, आज कल परसों करते 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 वर्षों के बाद में आज मिली। गोप्या कृष्णम उपलब्ध चिरात अभिष्टम जब प्रेक्षणे दृशेषु पक्ष कृतम शपन्ति सर्वा जम रात। बहुत दिनों के बाद देखा, रहा नहीं गया। आज वो अपने आंखों के बनाने वाले को भी अभिसंपात कर रहे हैं। ब्रह्मा तो शिष्य नहीं जानता, जानता तो हमें दो आंख दिया, उस पर भी पलक दे दिया और उसमें अश्रु दे दिए। यदि हम लोग ब्रह्मा होती तो तुम्हें दिखला देती, सारे अंगों में ही कृष्ण को दर्शन करने के लिए आंख ही आंख बना देती, फिर कृष्ण को अपने आंखों के माध्यम से हृदय में ले गई और ले करके उनका परिरंभण किया, आलिंगन किया, जो योगियों के लिए भी तुरापम, योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, उनके हृदय में नहीं आते। उस समय में कृष्ण उनको कुछ उपदेश देने लगे, देखो मैं कहां नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, जो ध्यान करेगा वो हमको सर्वत्र पाएगा। गोपियां खींच गई, जानते नहीं हो ये कहां उपदेश देना है और कहां नहीं देना है, कहां देना चाहिए उपदेश। हम तुम्हें भूलने के लिए चेष्टा करती हैं और भूल नहीं पाती, विषयों में मन लगाने की चेष्टा करती हैं और भूल नहीं पाती, और हमें ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। आहोष्यते नलिना पदारविंदम जोगेश्वरैरपि सदा अगाध बोधय संसार कुपतितो तरणावलंबम गेहम जुषामपि मनस्य उद्यासन। योग्य अयोग्य शिक्षा देने तुम नहीं देते, आज हमको तुम लोग शिक्षा, तुम शिक्षा दे रहे हो। हमारा मन और मन दोनों एक है, और लोगों का मन और हृदय दो है, किंतु हम लोगों का मन और मन हृदय दोनों एक है। इसलिए यदि चाहते हो हम लोगों को जीवित रखना तो हमारा जो मन, जो वृंदावन है, वृंदावन में चलो। यहाँ का हाथी घोड़ा, द्वारका का हाथी घोड़ा, सैन्य इत्यादि हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा क्षत्रिय वेश और क्षत्रिय अभिमान, देवती का पुत्र या वसुदेव का पुत्र हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो वृंदावन, जहाँ कुंज गलियों में कदंब वृक्ष के नीचे हमारा तुम्हारा मिलन होता था, हमें वही अच्छा लगता है। यह राज्यपाट और ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। कृष्ण ने उनको संबोधित करते हुए कहा, सांत्वना देते हुए कहा, भक्तिर ही तो भूतानाम अमृतवाय कल्पते दृष्टा नांग मदाप। देखो बड़े सौभाग्य से लोगों को भक्ति होती है, मेरे चरणों में हैति की भक्ति बहुत कम लोगों को, रेयर होता है। और उसमें तुम्हारा परम सौभाग्य जो हमारे अंदर में भक्ति ही नहीं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इत्यादि स्नेह तक हो गया है। तात्पर्य क्या है, स्नेह होने से अब तुम्हारा हमारा मिलन अब होने वाला ही है, इसको कोई नहीं बंद कर सकता। ये कर करके गोपियां अपने मनोरथ पर उन्हें चढ़ाकर वृंदावन में ले जाती हैं, यही रथ यात्रा है। तो ये वहां पर हुआ कुरुक्षेत्र में, वहां पर रानियों ने कहा, सत्यभामा रुक्मिणी ने, हमारे तो हम लोग 16108 रानियां हैं, कृष्ण एक पति हैं और उनको हम लोग वशीभूत नहीं कर पाती, और तुम एक होकर के अपने पांच पतियों को अपने वशीभूत कैसे कर लेती है? हजारों हम रानियां कृष्ण के चित्त को हम लोग आकर्षण नहीं कर पाते, और तुम अकेले पांच पांच पतियों की मन की रक्षा करके और उनको वशीभूत रहती है, जैसे महावत हाथी को अंकुश से वशीभूत कर लेता है, कैसे करती है? तब उन्होंने अपनी दिनचर्या बतलाई। तो पांडव ही नहीं, कृष्ण को भी वशीभूत कर रखती थी। कृष्ण उठेंगे उसके पहले उठती थी, दान पत्र क्या करेंगे वो सब ठीक रखती थी, स्नान करेंगे उसके लिए सारे कृष्ण के वस्त्र पानी इत्यादि सब गर्म ठंडा जैसा चाहिए वो सब ठीक कर देती थी पांडवों के लिए। फिर क्या ध्यान करेंगे उसको, राजकर्म कैसे चलेगा, सारी व्यवस्था ये द्रौपदी करती थी। पांडव लोग बैठते थे बस वो करते थे जैसा कहती थी, इसलिए उनको वशीभूत कर रहा। ललिता जी ने भी श्रीमती राधिका जी को या और गोपियों को बतलाया, शिक्षा दी, यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है अपना सुख दुख भूल जाओ, कृष्ण जो चाहते हैं जिसको चाहते हैं उसकी सेवा करो। कृष्ण जिसको चाहते हैं उसकी सेवा करो तब वो प्रसन्न। उसी प्रकार से गुरु को भी प्रसन्न करना है तो जिसको वो अधिक चाहते हैं या सेवा के द्वारा जो सब समय रखे हैं ठीक से, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करो, तब भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस तरह से बहुत बातें हुई। अब हम लोग कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद में फिर हरि कथा आरंभ करेंगे। कृष्णदास महामंत्र हो और सब लोग खूब कीर्तन करें। आप लोग भी सभी लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन का एक महाफल है, अकेले जब से सभी मिलकर के कीर्तन करेंगे उसका सामूहिक ऐसा फल है जो कृष्ण जल्दी से मिल जाए। कल हमने बतलाया था, ब्रह्मा जी ने कृष्ण के ग्वाल बालों को हरण कर लिया, और जब कृष्ण इधर गए तो बछड़ों को भी हरण कर लिया, और अपने ब्रह्मलोक से जब लौटे एक वर्ष लग गया उनको। कृष्ण वैसे ही लीलाएं कर रहे हैं, उतने ही सखा उनकी बांसुरियां, उनके सिंगे, उनका स्वभाव, बोली, सब कुछ पहले जैसा सखाओं जैसा अपने खुद बन गए, और प्रतिदिन उनको लेकर के गोचारण में जाते और फिर वहां से लौट आते घर में। जब दो चार दिन थे बाकी एक वर्ष होने में, उस समय में बलदेव जी ने कहा ये क्या बात मेरी समझ में नहीं आता, ये तो कोई भूत प्रेत की माया हो नहीं सकती, किसी देवताओं की भी माया नहीं हो सकती, ब्रह्मा और शंकर की भी नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूं एक वर्ष पहले जितने भी ब्रज की माताएं थीं कोटि कोटि ग्वालिनें, वो अपने बच्चे से अधिक कृष्ण को प्यार करती थी। पहले कृष्ण को दूध पिला करके अपने बच्चों को दूध पिलाती, और आज अपने बछड़े में जैसा प्रेम, अपने बच्चों में जैसा प्रेम है, और कृष्ण में भी वैसा ही प्रेम। देखो तो गैयाओं का, उनका पहले कृष्ण में अधिक प्रेम था, कृष्ण को अपने धारोष्ण पिलाती थी, और अब गायें अपने बच्चे और कृष्ण में समान प्रेम है। ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण से भेंट हुई और कृष्ण से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा एक यशोदा मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा? करोड़ों करोड़ों गोपियों की तो बेटा बना हुआ और उनका स्तनपान कर रहा, और उसे भी भूख नहीं मिली, मिटी नहीं गई। अब करोड़ों करोड़ों गैयाओं और उनका बछड़ा होकर के उनका दूध पी रहा है। कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, समझ गए बलदेव जी। और दूसरे दिन जब गए तो ब्रह्मा जी आए और देख करके देखा जी गुफा में भी वहां पर बछड़े जैसे के तैसे सो रहे हैं, और बाल बाल भी सो रहे हैं, और इधर कृष्ण के साथ में बछड़े चर रहे हैं और बाल बाल इनके साथ में खेल रहे हैं। बुद्धि चकरा गई एक साथ में, उन्होंने देखा दो आंखें इधर, चार आंखें इधर और चार आंखें उधर, एक साथ में देखा, यहां भी एक वहां भी, असल कौन है? एक तो कोई नकली तो होगा ही, इसमें असली असली बछड़े और मेरे कृष्ण के ग्वाल बाल ये कौन है, और वहां पर सोए हुए हैं वो कौन है? कुछ समझ नहीं सके, झट भूमिष्ठ होकर के दंडवत प्रणाम करके और लपुट की नाई गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा कोई बछड़ा नहीं, कुछ नहीं, शंख चक्र और गदा पद्मधारी जितने थे बछड़े और ग्वाले कृष्ण के साथ में चतुर्भुज रूप धारण कर। थोड़ी देर के बाद में फिर शीश ऊपर उठाया, देखा कोई नहीं, कृष्ण और वो ग्वाल बालों के साथ में खेल कर रहे हैं। देखकर फिर तो पुनः लपटू की भांति गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, नौमिध्यते अब्र बपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्नसजे कवल बेत्र विशान बेनो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। पशु पशु को पालन करने वाले नंद बाबा के जिनका जन्म हुआ है, वो अपने चरणों में चिन्ह लेकर, उनके चरणों में 19 प्रकार के चरण के चिन्ह होते, सर्वत्र घूम रहे हैं, गैयों को चरा रहे हैं, सखा लोग उनका गान कर रहे हैं, और कैसा सुंदर है उनका शरीर, मानो श्यामंग पर बिजली पीतंबर फहरा, गले में माला है, बन माला है। इस तरह देख करके और भी स्तुति करने लगे। कृष्ण एक सखा के हाथ कंधे पर हाथ देकर और कमल जैसे नचा रहे हैं, उनके तरफ भूक्षेप भी नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना की, तदभूरि भाग्यमी जन्म किम पटव्यम जजगोकुलेपी कतमांग रजोभिषेकम जज्जीवी तंतु निखिलम भगवान मुकुंदस्तत्याजर जर श्रुति नैक्य में, जिनकी चरण की धूली की खोज ये श्रुतियां वेद सब करते हैं। मैं वृंदावन में कहीं एक वृंदावन की धूली बन जाता, कोई भी बन जाता, कुछ भी, हमारा जीवन सौभाग्यमय हो, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता। प्रभो मैंने तो ऐसी कोई तपस्या या कुछ नहीं किया है, आपकी लीला में मैंने कुछ बाधा दी, वृंदावन में संभव पर नहीं होगा मेरा जन्म, जैसे तैसे गोकुल में भी मेरा जन्म हो जाए, और गोकुल में भी कैसे, वहां पर मैला कमाने वाली जमदारनियां होती हैं, जबकि मैला इत्यादि फेंक करके दूसरों के घरों से और पैर धोने के लिए आती हैं, अपने घर पर एक पत्थर की शिला रहती है, उस पर पैरों को रगड़ रगड़ करके पानी से धोती हैं, मैं वही पत्थर भी हो जाऊं तो हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। वेद की स्थितियां उसको नहीं पाई, ओहो आपसे मैं क्या मांगू, सब कुछ तो आपने पूतना को दे दिया, जिसने माता का वेश बना करके केवल आई और उसको धात्री उचित गति देती, धाई की गति जो दूध पिलाती है, और बाकी रहा क्या जो गोपियों को देंगे, जो अपने स्तन से दूध पिलाती हैं, आपको स्नेह करती हैं, क्या देंगे। ओहो आपकी महिमा यदि कोई कहता है जो मैं जानता हूं तो वो मूर्ख है। पृथ्वी की रेती और आकाश के तारों को कोई गिनने वाला भी हो तो भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, नहीं गिन सकता। कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, न उनके तरफ में देखा, और फिर बोले जैसे अब आज्ञा दीजिए, अब मैं समझ गया, अतः आदेश दीजिए मैं जाऊं। और बच्चे जो उनके साथ में खेल रहे थे, ये चौमा चौमा, चौमा माने चार मुख वाला, उस गांव का नाम जहां पर ये लीला हुई थी उस गांव का नाम भी चौमा है, चार मुख वाला है, उसकी दिल्लगी करने लगे ब्रह्मा के साथ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने चले गए। उस समय एक और बात हुई, उस समय में एक वर्ष के अंदर में गर्गाचार्य थे ज्योतिष विद्या के पारंगत, उन्होंने घोषणा की यह वर्ष बड़ा शुभ है, इस वर्ष यदि कोई अपनी लड़की की शादी करेगा वो धन धन्य से परिपूर्ण और सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि को पाएगा, इसलिए उस वर्ष में जितनी भी शादियां हुई वो किससे हुई, कृष्ण स्वयं बने हुए थे ग्वाल बाल, उनके साथ में शादी हुई, इसलिए सब गोपियों से शादी भी उन्होंने, यहाँ तक कि जो माताएं गर्भित गर्भ में थी बच्चे, तो उसे कहती है देखो हमारा बेटा होगा तुम्हारा बेटी होगी, अथवा तुम्हारी तुम्हारा बेटा होगा मेरी बेटी, तो हम लोग अभी से शादी कर देते हैं, वो भी शादी हो गई, ऐसा भी हुआ। एक लीला के साथ में भगवान बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। इसके पश्चात धेनुकासुर का वध हुआ। धेनु माने क्या होता है, गधा, जो कृष्ण का भजन नहीं करते वह सब गधे हैं, शास्त्र में ही ऐसा कहा, गोखुर गोखर, जानवरों में वो गधे हैं, सब माल ढोते हैं चीनी के बोरे और सब अच्छे अच्छे कपड़े, किंतु उनको कुछ नहीं मिलता, उनको मिलता है पुरस्कार में गधी का लत का वो दोलत्ती, बस और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कृष्ण बलदेव ताल फल खाने के लिए गए, ताल देखा है पकने पर काला काला बन जाता है, बड़ा सुगंध आता है, वहाँ गए और वो धेनुकासु अपनी पत्नी और अपने हजारों बच्चों के साथ में वन की रखवाली करता था। जो कुछ फल होता कंस महाराज के यहाँ भेजा जाता और कोई ब्रजवासी नहीं पाता था। आज बच्चों को भूख लगी, बच्चों ने बलदेव जी से कहा, बलदेव जी गुरु हैं, वो लेकर के गए और एक पेड़ को नीचे से ही हिला दिया, उसमें पके हुए फल धप 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 गिरे और फिर तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ टकरा कर सारे पेड़ फल गिर गए। और इतने में धेनुकासुर ने बलदेव पर आक्रमण किया, बलदेव जी ने पिछले पैर को पकड़ करके घुमाया, प्राण निकल गया और फेंक दिया, तब पेड़ सारे गिर पड़े। तब इस तरफ से सारे जितने गधे और गधों का परिवार था मारा गया। वन में लीद और रक्ता रक्ती हो जाने से कोई भी सखा कुछ फल नहीं खाया। फिर जब वो साफ होने के बाद से तब दो चार जो बचे थे उसके फल को खाए। बलदेव जी गुरु हैं, गधों को ठीक करने वाले हैं। बलदेव जी बल के अधिष्ठात्री देवता भी हैं, इसलिए गधे की अज्ञानता को दूर कर मारकर तब भजन में लगाते हैं। हमारे अंदर में बहुत सी कामनाएं वासनाएं हैं, वे सो मेनी थिंग्स इन अवर हार्ट, ओ प्रभु वी हैव सो मेनी बैड डिजायर्स ऑन योर हार्ट एंड दैट इज व्हाई वी कैनॉट गिव अप अवर सेल्फ। सो गुरुदेव एज ए बलदेव ही टेक्स अवे ऑल द वल्नरेबिलिटी फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऑल द डिवोटी एंड देन दे कैन डू भजन। इसलिए बलदेव प्रभु जी गुरु हैं। इसके बाद में कालियदा का वध कालीहरद में गए, पानी विषैला हो रहा था, उसमें गायें चरती हुई आई और उसके हवा से ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कुछ सखा लोग भी ऐसे हो गए और कृष्ण वहां गए कदम्ब वृक्ष ऊपर में चढ़कर और छलांग दी। कदम्ब वृक्ष केवल एक ही बचा था जिस पर गरुड़ जी अमृत का घड़ा लेकर के कलश देकर के बैठे थे, इसलिए वो नहीं मरा था, सूखा था, बाकी सब सूख गए। कृष्ण उसी पर चढ़ करके छलांग लगाकर कालियों को दमन किया और उसको रमणक द्वीप में भेजा। उसे तो मारी डालते क्योंकि उनकी पत्नियां बड़ी सुशील और भक्त थी कृष्ण की। कभी कभी देखा जाता है पति लोग पत्नियों को भजन नहीं करने देते, तरह तरह से कष्ट देते हैं, तो ऐसे पति को कृष्ण दंड देकर और उनको सुधारते हैं। उन्हीं की प्रार्थना से कृष्ण ने उनका जीवन दान दिया और उन सबको वहां से भेज दिया रमणक द्वीप में। इसके बाद में नागपत्नियों ने प्रार्थना इत्यादि की थी। एक समय कृष्ण वन में गोचारण कर रहे थे, कोटि कोटि गायें थी, महिष्य भैंस भी बकरे भी, या भैंस स्वभाव वाली गायें, और एक बार अभी बच्चा दिया अजा अभी बच्चा ने दिया वो गायें, चराते चराते वो भंडीर वन में पहुंचे, भंडीर भट्ट जहां गाय कृष्ण तो वहीं पर बैठ करके खाने लगे, बच्चों को खिलाने लगे और गायें चरते 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 हरी हरी घासों को देख करके आगे बढ़ गई। हमारी इंद्रियां भी ऐसे हैं, तरह तरह की कामनाएं होती हैं। हमारी स्त्री सुंदर नहीं है, उससे भी ये सुंदर है, उससे भी वो सुंदर है, उससे भी वो सुंदर है। पाश्चात्य देशों में ऐसा ही होता है, इंद्रियां भक जाती हैं। ऐसे इंद्रियों से भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो वो कहां पहुंची? गभीर वन में पहुंची, जहां पर केवल रेती रेत था गोकुल में, और जिसमें हाथी भी डूब जाए से सरकंडे थे। जब वहां पर गाय पहुंची, तीव्र ताप से नीचे का बालू तप गया और वो प्यास से छटपटाने लगी, और इतने में किसी कंस के दूत ने आग लगा दी। सखा भी कृष्ण को ना पूछ करके वो भी वहीं पर पहुंच गया, गाय को ढूंढते ढूंढते। उस समय में वन में चारों तरफ से आग लगी। जब आग लगती है तो हवा जोर से चलती है और आग की एक फ्लेम को लेकर एक दूसरे दूसरी जगह हजारों मील में उसको फैला दिया, और बीच में सखा और गायें जलने लगी। उन्होंने कृष्ण को ध्यान, हे कृष्ण हे बलदेव रक्षा कर। कृष्ण तो दूर नहीं है, झटाए बोले जैसे आंखें बंद करो, आंखें उन्होंने बंद की और देखा क्या, वही भांडीर भट्ट के छाया में जमुना नदी के तट पर पागुर कर रहे हैं और सखा लोग ऐसे ही भोजन कर रहे हैं। देख करके सबको बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे हो गया। तो हम लोग अभी जो दुख पा रहे हैं, हमारी इंद्रियां चर रही हैं, क्या चर रही हैं, विषय भोगों को, तरह तरह के विषय भोग। और जब ताप से जलने लगते हैं उस समय कोई हा कृष्ण बलदेव कहे तो देखेगा कहां आग और कहां क्या। कृष्ण के साथ में गोलोक वृंदावन में विहार कर रहे हैं, ऐसा देखो। तो ऐसी सब लीला करते हुए अक्रूर जी वहां पर पधारे। रासलीलाएं भी, रासलीलाओं का विस्तृत वर्णन है। अक्रूर मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन में नंदगांव में, और वहां पर कृष्ण से भेंट हुई। कृष्ण को नंदा वसुदेव और देवकी का हाल बतलाया, कितने बड़े दुखी हैं, उनके छाती के ऊपर में दाल दलता है, पैर से ठोकर मारता है, अपमान करता है, केवल प्राण बचे। कृष्ण बलदेव सुन करके आए, कुबल्यापीर हाथी को मारा, और दंगल करने वाले कुश्ती लड़ने वाले दक्षिण के प्रदेश के चारुण मुष्टि को मारा, और कूद करके ऊंचे सिंहासन से उसकी चोटी पकड़ करके गिरा कर उसके ऊपर में कूद गए, वो मर गया। ऐसी सब लीलाएं हुई। कृष्ण इसके बाद में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, 60 दिनों में 60 कलाएं, 64 कलाएं पढ़ करके बलदेव के साथ में यहां लौटे। जब लौटे ब्रजवासियों की याद आई, नंद बाबा और माता की याद आई, गोपियों की याद आई, छत पर चढ़कर जमुना के किनारे रोने लगे। उद्धव जी कृष्ण को खोजते खोजते ऊपर में गए, उस समय कृष्ण की घीघी बंधी हुई थी, रो नहीं पा रहे थे। उद्धव जी का हाथों में हाथ लेकर और तब उद्धव से कहने लगे, उद्धव गच्छ, वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ, उन्हें सांत्वना दो, और उसे भी यदि गोपिया जो मेरे विरह में तड़प रही है, जिसका मैं ही केवल जीवन स्वरूप हूं, वो छटपटा रही हैं, केवल मेरे एक संदेश के लिए मैं आऊंगा, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा, तुम जाओ उनको सांत्वना। इसके बाद अभी श्रीमान तीर्थ महाराज जी इसके बाद में उद्धव जी का संदेश संक्षेप में कुछ बोले। हाँ एक मिनट, एक मिनट, कृष्णदास मन रो लागे न। गोपियों की विरह की बातें सुनी, कृष्ण मथुरा में भी गोपियों के विरह में तड़पते हैं, इनकी व्यथा कौन समझे। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दिया, वो तो वन में चली गई, दो बेटे भी उनके हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनसे अपना कुछ दुखड़ा रो देती हैं, वो सांत्वना दे देते हैं, किंतु राम को सांत्वना कौन देगा, कोई नहीं, किसी से कुछ कह नहीं सकता। उसी प्रकार से गोपियां तो करुणों हैं, करुणों गोपियां एक दूसरे से अपने मन को हल्का कर लेती हैं वहां का दुख देकर, किंतु बेचारी कृष्ण तड़पते हैं, अपने मन की व्यथा भी किसी से नहीं कर पाते। सोचा मथुरा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे दिल दुख को दर्द को समझे, उद्धव को मैं वृंदावन में ब्रज में भेज दूँ, और वो गोपियों की पेट प्रेम की पाठशाला में कुछ पढ़ लिख करके आएगा तो कुछ समझ सकता है, तब उससे बातें मैं करूँगा, हमारे दिल के दुख को दर्द को वो कम कर सकता है। इसलिए ऊपर से तो कहा जो बच को माता पिता को और गोपियों को सांत्वना देने के लिए जाओ, किंतु वो जानते थे कि इनको सांत्वना कोई विश्व में देने वाला नहीं है जब तक कि मैं नहीं जाऊं। भेजा, उद्धव गए, गोपियों की प्रेम के पाठशाला में जब गए तो उनका वो विद्यालय है महाविद्यालय विश्वविद्यालय, गोपियों ने उनकी परीक्षा ली, इस विश्व प्रेम के महाविद्यालय में ये भर्ती करने योग्य है या नहीं, 80% मार्क आया है कि नहीं तब लेंगे। उद्धव से पूछा, ये बतलाओ तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थी प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम, एक उपाधिक प्रेम और एक निरुपाधिक। जैसे इन्होंने बतलाया वेश्या का प्रेम, भौरे का प्रेम, भिक्षुक का प्रेम, हिरण का प्रेम, पुरुष का स्त्रियों के प्रति प्रेम, ये सब स्वार्थ में है, किंतु उद्धव हमारा प्रेम निस्वार्थ था, हमने कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहा, एक कपड़ा कुछ भी नहीं चाहा, कृष्ण का प्रेम भी बड़ा निश्चल था, कोई स्वार्थ नहीं। फिर उद्धव बतला सकते हो हमारा प्रेम कैसे टूट गया। उद्धव सिर खुजलाने लगे, कोई उत्तर नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया, केवल पाठशाला भवन विद्यालय को देखा, और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ललिता विशाखा को देखा और प्रिंसिपल को देखा, राधा जी को देखा, और उनके प्रेम की थाह नहीं लगा सके, केवल ऊपर से ही देखा। उस समय में वे गोपियों को भावों को देख करके उनकी प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना किया उन्होंने? एता परम तनुभितो भो गोपबद्धो गोप गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वंचन्ति जद भाव भी वो मनोयो बयांच किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस। वो गोपियों का ही ब्रज में जन्म लेना धन्य है। ब्रज इसलिए धन्य है कि वहां पर गोपियों ने जन्म लिया। मथुरा इसलिए धन्य है कि मथुरा में ब्रज है, और ब्रज किस लिए धन्य? गोपियों के लिए धन्य। गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भावा, अखिल विश्व ब्रह्मांड के वो पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, अखिल रसाम सिंधु है, और उनमें गोपियों का रूढ़ भाव, ऐसा रूढ़ भाव, उनको अपना प्रियतम मानकर उनके प्रेम में विफल हो जाती है, मिलन में कैसा आनंद राश इत्यादि, और बिछड़न में कैसा विरहन, कोटि कोटि ब्रह्मांड के दावानल मिला करके भी उस विरहाग्नि की तनिक भी उपमा के पात्र नहीं हो सकते, इतना उनका विरह, उनमें इतना रूढ़भाव। वाच्छंद जद भाव की वो मनो बयंच, हम लोग भय से भीत होकर के मुनि लोग और हम लोग नारद इत्यादि और मैं उद्धव इत्यादि, ये सब जिसकी वंछा करते हैं, कामना करते हैं, और वो प्रेम हमें नहीं मिलता। उद्धव जी ब्रज में देखा तो किंतु आ रह नहीं सके, डर गए, डर के चले गए मथुरा में। सोचा गोपियों का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, ब्रह में तड़फ रही हैं, मर रही हैं, छटपट आ रही हैं, कभी यदि मैं ब्रज में रहूंगा तो मेरी भी दशा ऐसी हो जाएगी, चलो चलो जल्दी से लौट। केवल मनी मन में कुछ वांछा की जो आगे बतलाएंगे हम। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, ब्रह्मा जी का जन्म लेने में या ब्राह्मणों का जन्म लेकर के क्या होगा, जिसमें अनंत कृष्ण की अनंत कथाओं का, लीला कथाओं का रस जिसमें नहीं। देवताओं का जन्म भी, ब्रह्मा का जन्म भी, किसी का जन्म लेना सार्थक नहीं है यदि कृष्ण प्रेम नहीं हुआ। क्विमा स्त्री ओ वनचरी व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे जो कई परमात्मा ने रूढ़ भावा, नन्ही स्वरों न भजतो अभितुषो अपि साक्षात श्रेयस्तमुत अगत राज। क्विमा स्त्री ओ, साधारण अर्थ तो यह है, यह वनचारी गोपियां कहाँ ये व्यभिचार दुष्ट, और कहाँ कृष्ण में रूढ़ भाव उनका, कहते नहीं इसका अर्थ ऐसे मत लगाओ। ये संसार की स्त्रियां जो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे पति को बनाया है उनसे प्रेम करती हैं, कहाँ ये व्यभिचारिणी दुष्टा, और कहाँ ब्रज की गोपियां जिनका कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव है, वो कृष्ण की पराशक्ति है, लादनी शक्ति है, साधारण नहीं है, उनको साधारण स्त्री मत समझो। विचार नन्हेश्वरो, अरे कृष्ण की तो बात क्या, नन्हेश्वरो न भज तो अपजुसो, अभी कृष्ण तो ऐसे है ना जैसे औषधि है, किसी वैद्य ने कोई औषध दे, जाओ खाओ ठीक हो जाओ, बदलाए नहीं जी क्या है ये, उसका गुण न जानने पर भी औषधि का सेवन करने से जैसे औषधि दूर हो जाती, ऐसे कृष्ण को परब्रह्म नहीं जान करके भी गोपियों ने कृष्ण को परब्रह्म नहीं जाना। हमारे नंद बाबा जसोदा जी ने उनको परब्रह्म नहीं माना, क्या माना? अपना पुत्र माना। गोपी ने अपना प्रियतम माना। नंद बाबा तो कहते हैं कि हाय हाय उद्धव, तुमने मुझको सौभाग्यवान बतलाया, मेरा जैसा दुर्भागा जगत में किसी ने आज तक जन्म नहीं लिया। पिता तो एकमात्र दशरथ थे, जो अपने पुत्र के जीव बिछो होने पर हा राम बस चले, मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, मैं मर नहीं गया अभी तक, इसी क्या मुझे दुख है। ब्रह्मा ने हमारे कलेजों को वज्र से बनाया है, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ननेश्वरो न भजतो विदुषो अपि सख्या। कृष्ण को पर ब्रह्म न जान करके भी यदि कोई करे तो क्या होगा? सच्चा उसका कल्याण हो जाता है। यदि कृष्ण को भगवान न मान करके आप लोग भी उसे संबंध जोड़ करके प्रियतम प्राण बल्लभ कृष्ण से संबंध रखे, जो गुरु देता है जीवन धन्य होगा। हम लोग चेष्टा करते हैं कृष्ण भगवान भूल जाएं और गोपियों जैसा ही कृष्ण को हम लोग समझें, किंतु कहां आता है? नितांत रते प्रसाद सज्जोषिता भी नलिन गंधर्व। और की तो बात क्या है? नायन श्रीयो, अरे द्वारका की महिषियों की बात लो, बैकुंठ में लक्ष्मी जी हैं, स्वर्ग में देव जो भगवत अवतार हैं उनकी स्त्रियां हैं, जिनके अंगों से कमल जैसा सुगंध निकलता है, वो भी अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाई जैसे गोपियों। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी गोपियों में के गले में हाथ ऐसे गले से पकड़ लिया, किस लिए? जैसे बेटा अपने पिता के मैया को ऐसे गले में हाथ लगा, मानो कृष्ण ने उसी प्रकार से अत्यंत दीनहीन होकर के कहा, मैं प्रेम के समुद्र में डूब न जाऊं, तुम हमें हमारी रक्षा करना। उनके गले में हाथ लगा है, ऐसी कृपा किसी पर भी नहीं की। आसाम हो चरण रेणु तुषाम श्याम वृंदावने किमप कल्पलताओ सभी नाम जादुस्तजम स्वजन आर्य पछन चहित्वा भेजे मुकुंद पद में श्रुति भेजूंगे। श्रुतियां भी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भी कृष्ण का भजन किया, उनको वह सौभाग्य नहीं मिला। आसाम हो चरण रेणु, ऐसे गोपियों की चरणों की सेवा करने के लिए हम वृंदावन में कहीं गुल लता धूप की घास इत्यादि हो जाऊं और गोपियां अभिषेक के लिए जब जाएं रात में, उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर लग जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जा वैश्यार्चित आजाद भी आप्त कामो यदात्म निराष्ट गोष्ठ्यम कृष्णस्य तद् भगवतम चरणारविंदम नस्तम तनेश बिजहो परिदर्भता। ओ जावै श्रियार्चित, जिस लक्ष्मी की कृपा ब्रह्मा शंकर सभी लोग चाहते हैं, और महा महायोगी लोग मन में भी जिनके चरणों का ध्यान करके नहीं पाते, और गोपियां उन सुकोमल चरणों को अपने हृदय पर रखा, और कैसे रखा? धीरे धीरे डरते डरते रखा, कहीं के सुकोमल चरण हमारे कठोर वस्त्र सब से उनको कुछ दर्द न हो, क्लेश न हो, इस तरह से रखा। कितनी सौभाग्यवती ये गोपियां हैं। नस्तम तनेश बिजहु परिरक्षता, और अपने सारे ताप को दूर कर दिया, नहीं किसके ताप को दूर किया? कृष्ण के चरणों कमलों को रख करके कृष्ण के ही विरह का जो ताप था, काम का ताप था, उसको शांत कर दिया। ऐसे ब्रज गोपियों के लिए उन्होंने प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिघ्नसा जासान हरि कथोद्गीत पुनाति भवनत्र। मैं गोपियों की चरणों की एक धूली की वंदना करता हूं। करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, उनकी एक चरण की धूली का मतलब क्या? एक राधा जी की चरण की एक जनी धूल है, उसकी मैं वंदना करता हूं। क्यों करते हैं? जासन हरि को थोड़ी जिन मुख से भ्रमर की, गोपी की, बेणु की इत्यादि निकली है, जुगल की विश्व को पवित्र कर सके। इन कथाओं का यदि कोई मन से श्रवण करे तो श्रवण करने से भक्ति हो करके पहले हृदय में आएगी और उसके काम वासना सब को वो दूर कर देगी। इसलिए धन्य है गोपियां, उनकी चरण की धूलि की मैं वंदना करता हूँ, वो हमारे ऊपर में कृपा। यहीं तक हम लोगों ने भागवत की कथा आज सुनाई। आज अंतिम दिन है, हम लोग इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। जो सुनाया तब कुछ चाहते हैं, यही कृष्ण के चरणों में आप लोगों की ऐसी ही श्रद्धा हो। तुलसी भी नहीं चाहते, कोई प्रणामी भी नहीं चाहते, और सब जगह जगह जहां कथा होती है, कथा के अंत में लोग प्रणामी के रूप में कुछ दे जाते हैं। हम लोगों को इसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसी ही कृष्ण भक्ति हो, इस भक्ति में यदि लोभ हो गया तनिक भी, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने सब प्रकार की प्रणामी हम लोगों को प्रदान की। ऐसी कथाएं जगत में नहीं होती। आप लोग इन लोगों के, हमारे ब्रह्मचारियों के महाराज के ऋणी आप लोग रहेंगे। अगले वर्ष यदि हम होगा तो फिर हम आएंगे और इन्हीं कथाओं को दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में हम लोग आप लोगों को सब सुनाएंगे। कृष्णदास, हाँ
जय जय।